You're with SBS Radio.
अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त हम मेलबर्न के सबर्ब ब्रंसविक में मौजूद हैं और मेरे साथ मेलबर्न की सामाजिक कारकुन बतूल गिलानी हैं। बतूल गिलानी एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और अमाव फेडरेशन की फाउंडर हैं। बताते चलूं कि 2017 के मल्टीकल्चरल अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस के तहत इन्हें विक्टोरियन मल्टीकल्चरल हीरोज़ का खिताब मिला। बतूल गिलानी साहिबा, बताइएगा कि अमाव का मतलब क्या है और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का बुनियादी मकसद क्या था?
अमाव ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मेरी जो रोल मॉडल है वो लेडी खदीजा है, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है। जब मैं निकली थी यहाँ पर बाहर अपने प्लेसमेंट करने के लिए, जब मैंने अपनी स्टडीज़ कम्प्लीट की थी एज अ प्राइवेट प्रैक्टिस एज अ साइकोथेरेपिस्ट, तो मैंने देखा था बाहर के मुसलमान औरतों के लिए बार बार ये कहा जाता था कि बहुत ऑप्रेस्ड है। तो जब क्योंकि मैं 14 साल सऊदी अरब में भी रही हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पे औरत ऑप्रेस तो नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आइडियोलॉजी है, जो हमारा कुछ फ़िलासफ़ी है जिसकी वजह से औरत वो काम करती है। तो जब मैं बाहर आई तो मैंने जो अमाव का नाम रखा, वो सब हर कोई पूछता है कि इस नाम का मतलब क्या है। तो ये लेडी खदीजा की फैमिली है, अल्लाह को छोड़ के मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन उनकी जो फैमिली है उसको लेकर। तो मैंने कहा मेरी रोल मॉडल वो है, वो फैमिली ओरिएंटेड औरत भी थी और वो एज अ सोशल वर्कर भी थी, जिसका बहुत कुछ लोगों को नहीं पता है। ठीक है, लेडी जो खदीजा थी वो पहली औरत है जिन्होंने लेडीज़ रेफ्यूज कायम किया था उस ज़माने में, जबकि औरतों का इतना बुरा हाल था, जब औरत को दफन कर लड़की को पैदा होती दफन किया जाता था, वो उस वक्त वेलफेयर सोसाइटी चला रही थी। बस जो खिदमत है कल के वो हम भूल चुके थे और हम सारा कुछ सिर्फ इबादत पर जोर दे रहे थे, जो कि एक पार्ट है, एस्पेक्ट है हमारी इस्लाम का, मगर मेन रीज़न हम भूल चुके थे। तो उसे किस तरह मैं सामने लाती है औरत के, क्योंकि औरत को रिस्पेक्ट इस्लाम में भी जो मिली है वो दी नहीं जा रही है कल्चर और ट्रेडिशन के अंडर। इसका पहला इवेंट जो हुआ था तकरीबन मींस दिसंबर में 5 साल होंगे, मगर इसका पहला इवेंट जो इस तरह का हुआ था जिस पे कि गवर्नमेंट ने मुझे बाद में लास्ट ईयर जिस पे पार्ट ऑफ दैट था जो मुझे एक्नॉलेज भी किया, वो था हारमनी का, क्योंकि ये पहला ऐसा प्रोग्राम था जो हमने किया था जिसमें हमने सारे गवर्नमेंट के बॉडीज़ जैसे कि मल्टीकल्चरल और एथनिक कम्युनिटी लेजर ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट प्रीमियर ऑफ कैबिनेट, विक्टोरिया मल्टीकल्चर कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, विक्टोरियन पुलिस, बॉर्डर फेडरल पुलिस और लोकल जितने भी काउंसिल के लोगों को और हमारे एजुकेटर्स, फेथ बेस्ड और मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स को हमने बुला के एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया था और इफ्तार कराया था।
इफ्तार किया है रमज़ान के इस मौके पे आपने, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट से और काफ़ी सारे इदारों से लोगों को बुलाया है, सिख डिपार्टमेंट के भी आए हुए थे, विक्टोरियन गवर्नमेंट के लोग भी आए हुए थे और इन सारों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। तो ला के इफ्तार कराने का जो बुनियादी मकसद है, जो मेन रीज़न है, वो क्या है आपकी नज़र में?
असल मकसद यही था कि इनको बताना था कि जो बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया का जो चल रहा है, तो उसको सिर्फ हम लोगों को बोलकर या उससे तो नहीं ख़त्म कर सकते, ख़त्म करने के लिए हमें कुछ एक्ट भी करना होगा। तो ये एक पार्ट ऑफ वो है कि जिस तरह औरत ऑप्रेस नहीं है, लीडर के तौर पे खड़ी हो सकती है, और हमारे स्कॉलर्स इधर बैठे थे, कम्युनिटी लीडर्स बैठे थे, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। तो ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट मैसेज और नॉन फॉर प्रॉफिट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा था कि औरत हमारे इस्लाम में एम्पावर्ड है। दूसरा ये कि यूनाइट करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि ये इतनी बरकत का महीना है कि खुद ही बरकत दे देता है। तो ये इस प्रोग्राम से बेहतर और क्या हो सकता है जो हम करें, और एज अ मुस्लिम के तौर पे तो खुदा खुद ही बरकत लाता है इस प्रोग्राम में।
अच्छा, आपने मेंशन किया था अपनी स्पीच में कि आप कैल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कम्युनिटीज़ के साथ भी काम करती हैं, तो अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तानी और कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ अमाफ काम कर रही है और किस किस्म का काम कर रही है अपार्ट फ्रॉम इफ्तार डिनर्स? आप लोग और क्या सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं?
अमाफ ने जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो हमने सबसे पहले काउंसलिंग का, क्योंकि मैं चूँकि साइकोथेरेपिस्ट थी तो मुझे वही फील्ड लगी कि सबसे ईजी है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत बैरियर है काउंसलिंग लेने में, सिर्फ हमारी नहीं थ्रू आउट वर्ल्ड ही है, मगर हमारी कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे बहुत सी औरतें पोस्ट नेटल डिप्रेशन में मुझे मिली और वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, और ना हस्बैंड्स करने को तैयार थे कि क्या हो गया है। वो अब तक मुझे कुछ ऐसे वाकया मिले जो कि भूत परीत नज़र लग गई है, जो कि मुझे बहुत ही हैरत हुई कि हम 21st सेंचुरी में भी ये बातें कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा कोई प्रोग्राम स्टार्ट करूँ जो मुझे ईजी भी दे, और तो मैंने पहला जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो काउंसलिंग का था, डिस्कवर योर सेल्फ मेक योर वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो लोग आओ अपने आप को पहले पहचानो और फिर तुम्हें अपनी दुनिया को चेंज करने में अच्छा मौका मिलेगा। वो बहुत कामयाब गया, लोग आके अपने जो भी थोड़ा लगता था कि कैरियर को पूछने आ जाता था कोई अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, तो इस तरह मुझे नॉलेज मिलती गई और उनको सपोर्ट मिलता गया। तो इस तरह हमें बहुत सी चीज़ें मिली जो हमें बाद में उस पर काम करने का मौका अब जो मिल रहा है वो बेस्ड ऑन वो सारी रिसर्च है जो उस वक्त एज अ काउंसलिंग के तौर पे मैंने प्रोवाइड की थी। फिर इसके बाद मैंने नॉन मुस्लिम्स को एज अ सुपरवाइज किया, तो वो आके हमारे लोगों को काउंसलिंग कर रहे थे। पीछे मैं सुपरवाइज़र होती थी तो मुझे पता था वो कर क्या रहे, और साथ में उनको भी पता चल रहा था कि हमारी नीड्स क्या है। तो बहुत अच्छा इस तरह भी एक प्लेटफॉर्म बना कि लोगों को समझ आई क्रॉस कल्चर काउंसलिंग में जो लोग बहुत घबराते थे वो किस तरह उसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह प्लेटफॉर्म बढ़ता गया। फिर इसके बाद हमने यूथ के मेंटोरिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया, उनके रिक्रिएशनल सेंटर के तौर पर जिसमें क्रिकेट कैंपिंग और ये सब वुमेंस के लिए। पहले मैंने लीडरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, फिर हमें लगा कि औरतें तो लीडर्स अभी नहीं हैं, पीछे हम बहुत, तो हमने फिर एक बहुत प्यारा प्रोग्राम स्टार्ट किया, एम्पावरिंग वुमेंस टुगेदर। हम एक दूसरे को एम्पावर कर रही हैं, ग्रुप बनाया है और जिसको जो ज़रूरत होती है वो औरत करती है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह जब औरत एक दूसरे को हेल्प करना सीखेगी तो फिर उनमें से कोई लीडर्स भी बन जाएंगी इंशाल्लाह। मगर चूंकि वो इतनी पीछे है कि सडनली लीडरशिप गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है हमको फंडिंग, मगर हमें ऐसा फंड नहीं चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदा नहीं नुकसान। कंपैशनेट कम्युनिटी अफेयर्स प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स और स्किल बेस पे आते हैं तो वो कपल्स आते हैं ज़्यादातर, बहुत कम होते हैं कि फैमिली के साथ, बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आए या वो रहकर फिर एक्सटेंडेड फैमिली होती है। जब वो आते हैं तो उसमें मैंने सबसे बड़ा जो देखा है वो ये मसला देखा है कि ये वन ऑफ द पार्ट होगा हमारी कंपैशन कि उनके कॉन्फ्लिक्ट और जो डिस्प्यूट होते हैं मियाँ बी के छोटे छोटे, पाकिस्तान और इंडिया वहाँ पे बड़े होते हैं हमारे तो वो संभाल लेते हैं छोटी छोटी बातें, यहाँ पे वो कोई संभालने वाला नहीं होता, वो इतने बढ़ जाते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि बाकायदा वो तलाकों पे आ रहे हैं। तो छोटी छोटी सी मामूली अगर बात अब देखें तो अब लगेगा कि बेवकूफ़ाने बातें थी, इतनी बढ़ गई वो ईगो तक आ जाती और फिर उसके बाद का हल नहीं होता। तो वन ऑफ द पार्ट ये है कि उस वक्त हम उनको असिस्ट कर सके कि तलाक से पहले ही अगर उनको सपोर्ट मिल जाए। फिर जैसा मैंने कहा कि औरतें जब वर्क करती है तो उस वक्त यहाँ पे कोई नहीं उनके पास होता और मर्द कहते हैं हमारी अम्मा ने भी किया, तुम कौन सा नया काम कर रही, पर तुम्हारी अम्मा ने उस माहौल में किया था जहाँ पे औरत को इतने नखरे से रखा जाता है, लाड उठाए जाते हैं, यहाँ की बेचारी औरत वैसे ही डिप्रेशन में होती है, सबको याद कर रही होती है और मर्द आके वो थका हुआ बेचारा आता है, वो गलत नहीं होता, वो खुद बाहर से इतना काम करके आता है कि तुम आराम से घर में बैठी हो और तुम्हें बेकार के बस सूझ रहे हैं ये सारी बातें, मगर उस औरत के साथ जो गुजर रही होती है वो एक औरत समझ सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट भी नहीं समझ पा रही और हमारे लोग भी, कम्युनिटी भी नहीं समझ पा रही, मगर एज अ औरत की जब मैं काम करने लगी तो मुझे बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी नज़र आई जो बच सकती है हमारी फैमिली यानी जो स्ट्रक्चर्स है
उनको टूटने से
बचाने के
बिल्कुल।
तो ऐसे ये पार्ट ऑफ छोटी छोटी चीज़ें इसमें होगी। फिर जैसे फोस्टर कह रहे हैं रेफ्यूज है औरतों का, अगर औरत बाहर 3 दिन जाके रह के आती तो हमारा मर्द एक्सेप्ट नहीं करता, अब हम अपनी ही औरतों को औरतों के पास भेज रहे हैं मगर वो लीगल उसमें अब दायरे में लाना चाह रहे ताकि कोई घर पर रखते हुए डरे ना कि मैं किसी की बीवी रख रही हूँ कल मुझे परेशानी ना।
तो बतूल साहिबा आप बताएंगी कि अगर कोई आपकी सर्विसेज या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेना चाहता है तो वो आपको कहाँ पे ढूंढ सकता है, कैसे ढूंढ सकता है?
ईमेल एड्रेस सबसे बेस्ट है हमारा info@amaaf.org.au या batool@amaaf.org.au या secretary@amaaf.org.au। ये 3/24/7 तकरीबन समझे हम अवेलेबल होते कोई ना कोई जो जवाब देते, इवन रात को भी अक्सर, बट ज़्यादातर एक दिन के अंदर जवाब मिल जाता है। फ़ोन नंबर भी मेरा अवेलेबल है औरतों के लिए, जब उनको कभी ज़रूरत हो या किसी यूथ को इमीडिएटली तो मैं इवन रात को भी कॉल्स रिसीव करती हूँ।
बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे लिसनर्स में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो इन मुश्किलात का शिकार होंगे, तो हमारे पास बतूल गिलानी साहिबा जैसे समाजी कारकुन हैं जो ये काम कर रहे हैं और इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं, तो आप इनकी मदद हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बतूल गिलानी,
शुक्रिया बहुत बहुत आप लोग का भी किस जगह आपने अटेंड किया और हमारा साथ दिया।
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.